हरे कृष्ण श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद दसवां अध्याय श्लोक संख्या 19, 20 एंड 21। इस आध्यात्मिक ज्ञान में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मायं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंशी विभूषितकरा नवनीरधाभा पीतांबरधारो बिंबफलधरोष्ठात् पूर्णेन्द्रसुंदरमुखा अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्व अहं न जानि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतः स्तुवन्ति ईस्तवी वेदी सांगपत क्रमोपनिषदे गायन्तियं सामगा ध्यानावस्थित तद् गतेन मनसा पश्यन्तियं योगिनो यस्यान्तं न विदो सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिकी। पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम स्कंद दसवां अध्याय जिसका शीर्षक है द्वारिका के लिए भगवान श्री कृष्ण का प्रस्थान, श्लोक संख्या 19। कृपया इन अत्यंत ही पवित्र शब्दों को मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सूत गोस्वामी आज उन भगवान श्री कृष्ण जब जा रहे हैं तो उस समय क्या क्या हो रहा था उसके विषय में तो बता ही रहे हैं कि अर्जुन जो है वो छतरी लेकर पकड़े हुए थे, छत्ता पकड़ के, और है ना उद्धव और सात्यकी पंखा लेकर भगवान को झुला रहे थे, और वहां पर जो ब्राह्मण थे वो क्या कर रहे थे उसके विषय में आज बता रहे हैं। सुत गोस्वामी कहते हैं, अश्रुयन्ता शिशः सत्याः तत्र तत्र द्विजीरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रुयन्ता शिशः सत्याः तत्र तत्र द्विजीरिता नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः अश्रुयन्ता शिशः सत्याः तत्र तत्र द्विजीरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणस्य गुणात्मनः। शब्दात् अश्रुयन्ता, अश्रुयन्त का मतलब होता है सुना जाकर, आशीष आशीर्वाद, सत्य यानी कि वो जो तत्र तत्र द्विजेता, जितने भी वहां पर यहां वहां जितने ब्राह्मण वो थे जब भगवान जा रहे थे तो कितने सारे ब्राह्मण भी उनके साथ जा रहे थे, उनके साथ पीछे पीछे चल रहे थे, और वो सब क्या कर रहे थे, सत्य आशीष, सत्य आशीष दे रहे थे भगवान को, आशीर्वाद दे रहे थे, और वो सत्य आशीर्वाद दे रहे थे। सत्य का क्या मतलब है कि भगवान को वो आशीर्वाद दे रहे थे जो कि ऑलरेडी भगवान के अंदर पहले से ही थे। जैसे अगर भगवान को कह रहे थे सुखी भव, तो भगवान तो ऑलरेडी सुखी हैं। भगवान को बोल रहे थे यात्रा निर्विघ्न भव, कि आपकी यात्रा जो है वो निर्विघ्न समाप्त हो, यशस्वी भव, और जो भी भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे तो वो पहले से सत्य थे। वैसे यहाँ पर ये बात ना हमें पता चलती है कि ब्राह्मणों की वाणी सत्य है। वैसे तो श्रीमद् भागवतम में कई बार ये बात बताई गई है कि जब जो शुद्ध ब्राह्मण होते हैं, जो सदाचारी होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, जो कि वेदों का अनुष्ठान करते हैं, जब वो आशीर्वाद देते हैं ना तो वो कभी विफल नहीं होता। इसलिए हमें ब्राह्मणों का, संतों का सदैव आशीर्वाद देना चाहिए ताकि हमारे जीवन के अंदर जो बाधाएं हैं वो समाप्त हो और हम भक्ति में प्रगति करें। लेकिन भगवान को आशीर्वाद देकर उनकी वाणी पहले, वो तो आशीर्वाद पहले से ही सत्य थे क्योंकि पहले से हो गए थे, तो उनकी वाणी से जब ये शब्द निकल रहे थे तो उनकी वाणी सत्य हो रही थी। वो उनकी वाणी के कारण नहीं लेकिन भगवान के प्रभाव से वो स्वतः सारे, क्योंकि आशीर्वाद भगवान के अंदर पहले से ही थे। लेकिन क्योंकि भगवान जो है वो निर्गुणस्य गुणात्मना, वो निर्गुण है परंतु समस्त गुणों के स्वामी हैं, इसलिए भगवान के अंदर जितने भी गुणों की कल्पना की जाती है सारे के सारे गुण भगवान के अंदर है। अर्थात भगवान के अंदर सुशीलता, विनम्रता और ब्राह्मणों का आदर, ये सब था। भगवान जब इस संसार में विद्यमान हैं, होते हैं, तो अपने सारे गुणों को का ना भगवान सब स्पष्ट करते हैं। अब वो जब जा रहे थे हस्तिनापुर को छोड़ के तो सारे ब्राह्मणों से आशीर्वाद दे रहे थे कि कृपया हमें आशीर्वाद दीजिए, ऐसे ले रहे होंगे तभी तो ब्राह्मण लोग आशीर्वाद दे रहे हैं। तो भगवान के अंदर सारे गुण हैं, तो भगवान कभी भी अपनी भगवत्ता दर्शाते नहीं है कि मैं भगवान हूँ, मुझे किसी भी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, किसी भी आशीर्वाद की आवश्यकता नहीं। भगवान सदैव प्रेम और भाव के साथ जिसका जो पद है उसके अनुसार उसके साथ व्यवहार करते हैं। लेकिन यहाँ पर सूत गोस्वामी अत्यंत सुंदर बता रहे हैं, नानुरूपानुरूपाश्च, मतलब वो जो आशीर्वाद दे रहे थे वो भगवान के अनुरूप थे भी और नहीं भी थे। नानुरूपानुरूपाश्च यानी अब देखो दो तरीके से, एक तो भगवान निर्गुण है, अब जो निर्गुण है जो समस्त गुणों से ऊपर है उनको बोला जाए सुखी भव। अब वो तो सुखी है ही ना, तो फिर ये बहुत अटपटा सा लग रहा है कि सुखी भव, या फिर वो भगवान जो अनादिकाल से हैं और कभी भी जिनका मतलब जो समाप्त नहीं होते, वो प्रलय के बाद भी जो रहते हैं, ऐसे भगवान को कहा जाए चिरंजीवी भव। तो भगवान ये तो आशीर्वाद उन व्यक्तियों के लिए होते हैं जो कि संसार में आते हैं, किसी तरह से दुखी होते हैं तो उनको बोला जाता है सुखी भव। तो जो ब्राह्मण होते हैं या जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके आशीर्वाद जो है वो फलीभूत होते हैं, लेकिन अब भगवान को इन आशीर्वादों की क्या आवश्यकता। तो ये बहुत मतलब अनुरूप नहीं थे, ना अनुरूप से, क्योंकि जो गुणों के भीतर होता है उसको आशीर्वाद दिया जाता है ना। अब ये भगवान तो प्रकृति से परे हैं, स्वयं सुखमय हैं, आनंद का स्वरूप है, उनके अनुरूप नहीं है ये वाले, लेकिन फिर भी यहाँ वसुद गोस्वामी कहते हैं नानुरूपान रूपाश, अनुरूप भी थे। अनुरूप कैसे थे? क्योंकि अभी तो भगवान क्या कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। अभी लीला के इस समय भगवान क्या है, यादव हैं, युधिष्ठिर महाराज के मित्र भी हैं, भाई भी हैं, तो ये भगवान की स्थिति के अनुरूप नहीं थे लेकिन लीला के अनुरूप थे। तो ये ब्राह्मण जो है वो भगवान को आशीर्वाद दे रहे हैं। अनुवाद देखिए, जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद ना तो उनके अनुकूल है ना प्रतिकूल, क्योंकि वे सब उस परब्रह्म के लिए थे जो इसमें मनुष्य की भूमिका निभा रहे। वास्तव में परब्रह्म है तो फिर उन्हें इन आशीर्वादों की कोई आवश्यकता है और ना ही अनुरूप है ना अनुकूल है, परंतु क्योंकि इस समय वो मनुष्य की लीला कर रहे थे तो भगवान उस मनुष्य लीला का पूरा स्वादन लेते हैं, तो उनके अनुकूल भी थे। श्री प्रभुपाद जी अत्यंत सुंदर रीति समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक धुनिया हो रही थी। ये आशीर्वाद अनुरूप इसलिए थे क्योंकि भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो महाराज युधिष्ठिर के भाई हों, लेकिन ये अनुरूप भी थे क्योंकि भगवान परब्रह्म है और उन्हें भौतिक संबंधों से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। वे तो निर्गुण होकर भी दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोध नहीं होता, जबकि इस जगत में प्रत्येक वस्तु का विलोम होता है। यानी इस संसार में क्या होता है, हर एक वस्तु का अपोजिट होता है, हर एक वस्तु का नेगेटिव होता है, परंतु दिव्य जगत में सब कुछ पॉजिटिव होता है। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होता है, जैसे यहाँ श्री प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं, उदाहरणार्थ इस जगत में श्वेत का विलोम श्याम होता है, यानी सफेद का अपोजिट क्या होता है, ब्लैक होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं रहता। अतएव परमेश्वर के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चरित आशीर्वाद दायित्विक ध्वनिया विलोम लग रही थी। अब यहाँ संसार में कैसा लग रहा है, अभी भगवान है उनको बोल रहे हैं सुखी भव, भगवान है उनको बोल रहे हैं कि है ना निर्विघ्न यात्रा भव, भगवान तो है ना उनके लिए तो ये सब है नहीं ना, भगवान के संपर्क में जो ये आशीर्वाद दे रहे थे, ये दुनिया जो है वो थोड़ी ऐसी लग रही थी, विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोध दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती हैं। दिव्य चीज में अपोजिटता नहीं होती है, दिव्य चीज दिव्य होती है, चिन्मय होती है, उसमें कुछ भी विलोम नहीं होता है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं एक उदाहरण से बात स्पष्ट हो जाएगी। श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अब देखो अगर भौतिक धरातल पर देखा जाए तो चोर की कभी कोई इज्जत नहीं करता, चोर है ना एक बहुत बड़ा अपराध होता है, उसको पनिशमेंट भी दी जाती है, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण वही कार्य करते हैं तो फिर वो पूजे जाते हैं, है ना। तो भगवान के साथ कुछ भी जब कोई भी चीज भगवान के साथ संपर्क हो जाता है ना उसका, तो वो चिन्मयी हो जाती है, तो वो दिव्य हो जाती है, वो कार्य दिव्य हो जाता है, वो वस्तु दिव्य हो जाता है, वो व्यक्ति दिव्य हो जाता है जिसका संपर्क भगवान से हो जाता है। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों में वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घरों में माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनकी चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि संसार में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है, क्योंकि वो परब्रह्म है, अतः उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधों के बावजूद भी वे भगवान हैं। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं भगवान चाहे कुछ भी करे, उनके अंदर कभी भी ये विषमता नहीं होती है, विलोम नहीं होता है, वो सदैव दिव्य हैं, वो सदैव भगवान हैं। इसलिए यहाँ पर उनके जो आशीर्वाद थे वो उनके अनुरूप भी थे और अनुरूप नहीं भी थे, क्योंकि वो भगवान हैं तो उन्हें इन सबकी कोई आवश्यकता नहीं। लेकिन अभी तो क्योंकि वो नरलीला कर रहे थे, तो वो नरलीला के समय जो भगवान है उसका पूरा आस्वादन कर रहे थे उस लीला का, इसी ब्राह्मण सब भगवान को आशीर्वाद दे रहे थे। और अब इस अवसर पर जब भगवान जा रहे हैं, जैसे हमने पहले पढ़ा कि हस्तिनापुर की जितनी स्त्रियां थी वो कहाँ थी, छतों पर। प्रसाद शिखर हारूढ़ा कुरु नारियोदृक्षया, तो वो जो सारी कुल नारियां थी जो महल की छतों पे खड़ी थी, उस अवसर पर वो आपस में जो संवाद कर रही है ना, जो आपस में बातचीत कर रही है, उसको बड़े ही विस्तार से सुध को समझ यहाँ पर बता रहे हैं। तो वे कहते हैं, सुध को समझ कहते हैं, अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्व श्रुति मनोहरः अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्व श्रुति मनोहर अन्योन्यमासीत् संजल्प उत्तम श्लोक चेतसाम् कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम् सर्व श्रुति मनोहर। वे कहती अन्योन्यमासीत संजल्प, अन्योन्यमासीत मतलब वो क्या कर रही थी, एक दूसरे से बात कर रही थी। यहाँ पर संजल्प का मतलब होता है बात करना, आपस में जो सारी स्त्रियां थी, अब वो क्या कर रही थी, क्योंकि वो ऊपर छत पे चढ़ी थी, अब भगवान जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहे तो वो भी ऐसे कूद कर दूसरी छत पर, फिर उसके बाद दूसरी छत पर, कोई ऐसे मतलब एक बालकनी से दूसरी बालकनी में इस तरह आगे आगे जा रही है। सारे जो हस्तिनापुर के घर है ना वो ऐसे लाइन से बने हुए हैं, भगवान तो जो विशेष रोड है उसके ऊपर चल रहे हैं उनका रथ, और वो दोनों तरफ रोड के दोनों तरफ पे ना जो छतें हैं उनके ऊपर स्त्रियां हैं। अब वो स्त्रियां भगवान को इतना प्रेम से देख रही हैं और इतना आकर्षण हो रहा है भगवान की ओर, और जो आपस में बात कर रही हैं, उन स्त्रियों का संजल्प, संजल्प का मतलब होता बात करना, तो ये स्त्रियों का संजल्प इतना सुंदर था, इतना मनोहर था कि साक्षात श्रुतियां, या मतलब सर्व श्रुति मनोहर, श्रुतियों का मतलब होता है वेद या उपनिषद, तो सारे वेद और उपनिषद भी उनका अभिनंदन कर रहे थे, उनका अनुमोदन, सर्वश्रुति मनोहरा, यानी श्रुतियों और जो उपनिषद है वेद हैं, वो सारे के सारे उन स्तुतियों के लिए मतलब सुनकर उनको अनुमोदन कर रहे थे, उनका अभिनंदन कर रहे थे कि क्या बोल रही हैं। और यहाँ पर सर्वश्रुति मनोहर का मतलब होता है, श्रुति का मतलब होता है कान सुनने की जगह, और मन का मतलब होता है मन, यानी कि सब जितने भी वहां पर लोग थे, जितने भी ब्राह्मण थे, युधिष्ठिर महाराज थे, जो भी वहां पर बाजे बजा रहे थे, जो भी जितने भी लोग थे, सब लोगों के मन को सब लोगों के श्रवण को उन्होंने अपनी ओर आकर्षित कर लिया। जैसे ही उन स्त्रियों ने बोलना शुरू किया ना, सब शांत हो गए। जैसे हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि कितने बाजे बज रहे थे, नगारे बज रहे थे, लेकिन वो सब कुछ क्योंकि सारे जीव उन स्त्रियों की बात को सुनना चाहते थे, सब केवल उन स्त्रियों की बात को सुनने लग गए कि आखिर ये कितना मनोहर शब्द। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो। सारे वेदों के का वास्तविक उद्देश्य क्या है, मुझे समझना है ना। अगर वेद, यहाँ पर कितने लोग होते हैं जो वेद पढ़ते हैं परंतु शास्त्र पढ़ने के बाद भी वो कृष्ण को नहीं मानते, कृष्ण की शरण ग्रहण नहीं करते, कृष्ण को भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते। लेकिन यहाँ पर ये स्त्रियां, भले हालांकि कहा जाता है कि जो स्त्रियां होती हैं, शास्त्र कभी कभी हम ऐसा पढ़ते हैं कि स्त्रियों के अंदर इतनी बुद्धि नहीं होती है, स्त्रियों में अधिक बुद्धि नहीं होती है, लेकिन हम देखते हैं जो स्त्रियों ने कृष्ण के प्रेम के प्रति जो अपना स्नेह वर्णन किया है, वही शास्त्रों का वास्तविक सबसे महान अभिप्राय है। शास्त्रों में जो स्त्रियों ने भगवान के विषय में बोला है, जैसे गोपियों ने जो गाया है गोपी गीत, वेणु गीत, जो स्त्रियों ने भगवान की महानता बखान की है ना, उससे अधिक और कोई भी कुछ भी नहीं है। तो जैसे शास्त्र कहता है हरे कृष्ण, क्योंकि स्त्रियों के अंदर समर्पण भाव है, वो पूरा का पूरा समर्पण कर देती हैं, वो स्वीकार करती हैं भगवत्ता को। इसी जब वो भगवान के भगवत्ता को स्वीकार करके जब वो कहती हैं उनके स्नेह के विषय में, तो वो सर्वश्रुति मनोहर, समस्त श्रुतियों और शास्त्रों के भी मन को हरण करने वाला होता है। अनुवाद देखिए, चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान के दिव्य गुणों के विचार में डूबी हस्तिनापुर की के सभी गणों की छतों पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्तोत्रों से कहीं अधिक आकर्षक थीं। यहाँ पर चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अन्योनमासीत संजल्प, वो सारी आपस में बातें करी थी किसके विषय में, उत्तम श्लोक चेतसाम। उत्तम श्लोक यानी जो परमेश्वर, जिनकी प्रशंसा चुने हुए श्लोकों से की जाती है, जिनके हृदय, अब क्योंकि उनका चित्त जो है स्त्रियों का, वो उनके हृदय इस प्रकार लीन है, उन मतलब हृदय जो है वो भगवान, उन भगवान में लीन है। तो जो वो कुरु कौर इंद्र, जो कुरु के कुरुओं के राजा हैं, पूरा अर्थात राजधानी हस्तिनापुर की जितने भी राजधानी की जितनी भी स्त्रियां हैं, वो क्या कर रही हैं अभी, वो ये बातें वैदिक स्तोत्रों से भी अधिक आकर्षित थी। जो बातें कर रही हैं वो सर्वश्रुति मनोहर है। श्री प्रभुपाद जी तात्पर्य बताते हैं कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि समस्त वैदिक वांग्मय का लक्ष्य भगवान श्री कृष्ण है। वेदैश्च सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत्वेद विदे वचाहम। 15.15 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समस्त वेदों का जानने वाला मैं हूँ, समस्त वेदों का रचयिता मैं हूँ, समस्त वेदों का लक्ष्य मैं हूँ। तो श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, वस्तुतः भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है, और भागवतम में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतएव जब कुरु वंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें कर रही थीं, तो उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों से अधिक मनोहर लग रही थीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, वेद को पढ़ने से, क्योंकि वेद में क्योंकि हर चीज बहुत ही अप्रत्यक्ष रूप से छिप
पाकर लिखी गई है, इतना प्रत्यक्ष रूप से नहीं बताया गया। अभी हम पढ़ेंगे ये तो स्त्रियां क्या कहेंगी, वो फिंगर देकर भगवान को बोलेंगी, ये जो सामने कृष्ण खड़ा है ना, जो चल रहा है, वो कोई साधारण व्यक्ति थोड़े है, ये तो परब्रह्म परमेश्वर है। सामने कृष्ण को बता के वेद तो पढ़ते पढ़ते बंदा कोई कोई है ना पागल हो जाए, परंतु उसे कृष्ण बहुत सारे कम लोग होते हैं कि जिनको वेद पढ़ के भी कृष्ण दिखे। हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने कह दिया वेदों का लक्ष्य मैं हूँ, लेकिन वेदों के पढ़ने से मुझे नहीं जाना जा सकता। भगवान साफ में कहते न हम वेद न तपसा न दानी न चीजया, भले ही मैं वेदों का मकसद हूँ, वेदों के द्वारा वेदों का लक्ष्य हूँ, लेकिन वेदों के पढ़ने से मुझे नहीं जाना जा सकता। मुझे तो आप केवल अनन्य भक्ति से जान सकते हो, और वो कहाँ से प्राप्त होगी, भक्तों से प्राप्त होगी। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर इन स्त्रियों को कैसे पता चला कि ये भगवान जो है उनके विषय में जो अभी बता रही है, वो जो बोल रही है, वो उनको कैसे पता चला। तो वास्तव में क्या है कि हस्तिनापुर में जब भगवान श्री कृष्ण होते थे, तब जितने जितने ब्राह्मण साधु संत जितने बड़े बड़े योगी तपस्वी जो जंगलों में जाकर भगवान के लिए तपस्या करते थे ना, अब उनको पता चल गया कि भगवान कहाँ पर है, हस्तिनापुर में। अब वो हस्तिनापुर को छोड़ के जंगल में जाकर तपस्या करें क्या फायदा, इसी को क्या करते थे सब ना, हस्तिनापुर में जमा हो जाते थे, फिर हस्तिनापुर में आकर भगवान की विषय में कथाएं करते थे, भगवान के विषय का भगवान का बखान करते थे, भगवान को बहुत सम्मान करते थे। अब क्योंकि जब जब जैसे जैसे जबी जबी ऐसी कथाएं होती थी, जहां युधिष्ठिर महाराज का जो राज्य है वो सदैव संतों से भक्तों से भरा रहता था, और जब भी ऐसी कथाओं का आयोजन किया जाता था तो सारी स्त्रियां जो हैं वो गौर से सुनती थी। स्त्रियों के अंदर एक बात है, कथा जब होती है तो उसको सुनती हैं, अब कभी कभी सो जाती हैं, लेकिन फिर भी उनका ये होता है कि जाना चाहती हैं कि हम जाएं कथा में क्या हो रहा है, क्या हो रहा होता है वो कब, बुद्धि अब उतनी नहीं होती है, वो जज नहीं कर पाती है कि वो क्या बता रहा है, बस उसको एक्सेप्ट कर देती है। अब क्योंकि वो हस्तिनापुर की स्त्रियां थी और उनको एकदम परफेक्ट ज्ञान प्राप्त हो रहा था, क्योंकि वहां पर जो संत आ रहे थे साधु आ रहे थे एकदम परफेक्ट कृष्ण की महिमा बता रही थी, तो उन्होंने उसी को ग्रहण कर लिया था। ये सौभाग्य है हमारा कि हमें वास्तव में किसी शुद्ध भक्त के मुखारविंद से श्रवण करने का अवसर प्राप्त हो। श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि भगवान की प्रशंसा में जो गाया जाए वह श्रुति मंत्र है। गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बंगला भाषा में अनेक गीत लिखे हैं, लेकिन उसी संप्रदाय के एक अत्यंत ही विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। यानी ये बताया जाता है कि अब नरोत्तम दास ठाकुर ने जो भी लिखा है, भले ही वो प्राकृतिक भाषा में लिखा है, मतलब बंगाली में लिखा है, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण के प्रेम से ओतप्रोत हैं, इसलिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि नरोत्तम दास की जो ये वैदिक मंत्र, ये जो गीत है वो वैदिक मंत्रों से भी महान है। एक बार गौरकिशोरदास बाबा जी ने से किसी ने पूछा था कि कृष्ण के चरणों में प्रेम कैसे मिले, है ना, क्या इसके लिए क्या करना चाहिए। अब उस समय क्या था कि नरोत्तम दास ठाकुर ने एक छोटी सी पुस्तक लिखी है प्रेम भक्ति चंद्रिका। अब प्रेम भक्ति चंद्रिका उस समय एक ना एक पैसे में मिलती थी, सिर्फ एक पैसे में मिलती थी। तो फिर गौरकिशोरदास बाबा जी ने उत्तर दिया कि कृष्ण प्रेम तो एक पैसे में मिल जाएगा। वो बहुत आश्चर्यचकित हो गए भक्त, पूछने लगे एक पैसे में कृष्ण प्रेम, वो कैसे। तो गौरकिशोरदास बाबा जी ने कहा कि एक पैसे में प्रेम भक्ति चंद्रिका खरीदो और उसको पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, एक दिन कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। यानी कि यहाँ पर ये बता रहे हैं श्री प्रभुपाद जी कि नरोत्तम दास के जो पद है वो वेद की श्रुतियों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। और इसका कारण क्या है, श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इसका कारण उनकी विषय वस्तु है। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। उन सारी स्त्रियों में जो भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वांग्मय की सी चेतना का विकास हो आया था, क्योंकि बुद्धि भगवान के अंदर लीन हो गई थी, हृदय भगवान के अंदर बिल्कुल लीन तल्लीन हो गया था। अब भगवान क्या कहते हैं कि अक्ल से तुम मेरी भक्ति नहीं कर सकते, तुम्हारी अपनी जो अक्ल है उससे मेरे विषय में तुम कभी कुछ समझ नहीं सकते, तो तुम क्या करो, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तं येन मां उपयान्ति ते। तुम खाली मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो, फिर मैं क्या करूंगा, तुम्हें एक ऐसी अक्ल दूंगा जिससे तुम मुझे समझ सकते हो। तो यहाँ पर ये जो स्त्रियां थी, उनका चित्त, उनका मन, उनका हृदय तो भगवान के श्री चरणों में लगा हुआ था, इसलिए जब वो बात कर रही थी तो भगवान की कृपा से वैदिक वांग्मय किसी चेतना का विकास होया था। ददामि बुद्धि योगम तम, अतएव भले ही वे स्त्रियां संस्कृत की विद्वान न रही हों, तो भी उनकी बातें वैदिक स्तोत्रों की उपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी, क्योंकि हृदय पूरा का पूरा भगवान के अंदर लगा हुआ था। तब वो जो बात कर रही थी तो फिर क्या लग रही थी, जो वैदिक स्तोत्र हैं उनसे भी अधिक। अब उपनिषदों में वैदिक स्तोत्र कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं। अब क्योंकि उपनिषद में क्या होता है, डायरेक्ट से बात नहीं की जाती है, कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से बताया जाता है, इसलिए बहुत सारे लोग होते हैं उपनिषद पढ़ते हैं, वेद पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी भगवान को समझ नहीं सकते हैं। लेकिन स्त्रियों की बातें प्रत्यक्ष भगवान के विषय में थी, सामने खड़े हैं कृष्ण जा रहे हैं और सामने भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, अतएव वे अधिक हृदय ग्राही थी। स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक महत्वपूर्ण लग रही थी। श्रीला प्रभुपाद जी बोलते हृदय को तो, जो भक्तों का हृदय होता है ना, उसको तो वही बात अच्छी लगती है जो कृष्ण से संबंध हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं भगवत गीता में, मच्चित्ता मत्कतः प्राणा बोधयन्तः परस्परं कथयन्तश्च मां नित्यम् तुष्यन्ति चरमन्ति च। कि जो मेरे शुद्ध भक्त होते हैं उनके विचार मुझ में होते, जब वो बात करते हैं तो मेरे विषय में बात करते वक्त उन्हें बहुत आनंद आता है। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते कि वे अधिक हृदय ग्राही थी, वो हृदय को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करने वाली बातें कर रही थी, क्योंकि वो डायरेक्ट से भगवान के बारे में, साक्षात भगवान सामने खड़े और उनके विषय में बात की जा रही है, उनके वैभव को, उनके ऐश्वर्य को बताया जा रहा है। तो श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं कि स्त्रियों की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अधिक महत्वपूर्ण लग रही थी। तो स्त्रियां क्या कह रही हैं, श्लोक नंबर 21 देखिए, वे कहती हैं, सवैक्लायं पुरुष पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिशि सुप्तशक्तिषु सवैक्लायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिषि सुप्तशक्तिषु सवैक्लायं पुरुषः पुरातनो य एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे निमीलितात्मनिषि सुप्तशक्तिषु। शब्दों का अर्थ देखिए, सवैखिलायं पुरुषं पुरातनो, वो कह रही है, जो दूसरी स्त्रियां थी ना वहां पर, सारी भगवान की तेज और सौंदर्य को देखकर वो ज्यादा चकित हो गई। तो जो अब एक स्त्री उनको देखकर, भगवान को देखकर इतना मोहित हो रही थी, तो दूसरी स्त्री उनको ऐसे कह रही थी, अरे सखियों, तुम्हें आश्चर्य नहीं करना चाहिए, तुम ये जो सामने देख रहे हो ना, सवय केलायम, सवय मतलब वह जो सामने खड़ा है, जो कृष्ण है, वह जैसा मैं जानती हूँ, पता है वो कौन है? वो कोई साधारण पुरुष नहीं है। केला मतलब निश्चित रूप से ये जो सामने खड़ा है पुरुष या पुरातन, ये तो पुरातन पुरुष है, ये आदि पुरुष है। ये कब? यह एक आसीत, यह एकमात्र, यही विद्यमान रहता है। कब? जब अविशेष भौतिक रूप से व्यक्त आत्मनि, यानी कि जब क्या होता है कि सब कुछ जब लीन हो जाता है, वे कहते निमिलित आत्मा, यहाँ पर बोलते अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वरे, अग्रे गुणेभ्यो, इसका मतलब होता है सृष्टि के पूर्व, जब सृष्टि नहीं अभी तक। अब देखो दो दो तरह होता है, एक सृष्टि के पूर्व, सृष्टि सृष्टि के सृजन से पहले और लय के बाद, यहाँ पर ये बोलते हैं यह एक आसीद विशेष आत्मा है। सिर्फ जब सृष्टि समाप्त तो हो जाती है उसके बाद, और जब सृष्टि स्टार्ट नहीं होती, सृष्टि के स्टार्ट होने से पहले यह एक आसीद, सिर्फ यही तो रहता है और कुछ नहीं होता संसार में। सब कुछ तो क्या हो जाता है? निमिलित आत्मनि, ये सब बाकी सब जो कुछ होता है जब लय होता है तो वो सब इसके अंदर समा जाता है ना। निमिलित का मतलब होता है लीन हो जाता है। लीन का मतलब ये नहीं कि वो अपनी सत्ता खो जाता है। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से समझाएंगे कि जब सृष्टि प्रलय होता है तो सारे जीव जो होते हैं वो कारण रक्षा विष्णु के अंदर किस तरह से लीन हो जाते हैं, और फिर जब दूसरी दफा सृष्टि का सृजन होता है तो पुनः वो अपने अपने, जिस तरह से कोई सो के उठता है, जब रात्रि होती है तो क्या होता है, रात के समय हम क्या करते हैं, अपने कार्य बंद कर देते हैं, रात के समय ऑफिस बंद हो जाता है, काम नहीं करते, लेकिन सो जाते हैं। सोते समय हमें कुछ याद नहीं होता है कि हम ऑफिसर हैं या हम बिजनेसमैन हैं या हम स्कूल में पढ़ते हैं, ये सब भूल जाते हैं। लेकिन जब सुबह होती है तो क्या होता है, पुनः अपना कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो ये कह रही हैं कि जो प्रभु सृष्टि के पहले और लय के बाद अपने धाम में होते हैं, अपने धाम में विशेष अवशेष रहते हैं, वही तो ये है। मतलब डायरेक्ट से भगवान श्री कृष्ण जो सड़क पे चढ़ रहे हैं, मतलब वो जो रथ में बैठे हुए हैं, उनको इशारा करके बता रही हैं कि ये भगवान है। यही तो वेद शास्त्र का सार है, कृष्ण को समझना ही तो वेदों का सार है। तो कितना स्त्रियों का जो ये ज्ञान है, कितना उज्ज्वल और शुद्ध ज्ञान है। वास्तव में ये शुद्ध ज्ञान केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में ही हमें इस तरह से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि जो भगवान है वो कृष्ण के अतिरिक्त और कोई नहीं है। सवै क्लायम पुरुष पुरातन, ये जो सामने कृष्ण खड़े हैं ना, निश्चित रूप से यही आदि पुरुष गोविंद है। यह एक आसीद विशेष आत्मा, ये सिर्फ एक ही बचते हैं। जब अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मनीश्वर, जब सारे जितने भी अभी तक सृजन नहीं होता है, यानी अग्रे मतलब सृष्टि के पूर्व भी, और जब सब कुछ लीन हो जाता है, तब एक अकेले कृष्ण ही तो है जो अविशेष रह जाते हैं। अनुवाद देखिए, वे कहने लगी ये तो आदि भगवान है जो हमें निश्चित रूप से स्मरण है। प्रकृति के गुणों की व्यक्त सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे, क्योंकि वे परमेश्वर हैं, अतिव सारे जीव उन्हीं में लीन हो जाते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुकी हुई हो। अत्यंत ही सुंदर ये स्त्रियां बता रही हैं, और शिला प्रभुपाद जी अत्यंत ही सुंदर रीति से हमें इसके विषय में बताएंगे। तात्पर्य शिला प्रभुपाद द्वारा, शिला प्रभुपाद की जय हो। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं इस दृश्य जगत का विलय दो प्रकार से होता है। अब जो मतलब जो प्रलय आती है ना, वो दो प्रकार से होती है। हर 4,32,00,000,000 वर्ष, 100 वर्षों के बाद, यानी कि जब जो ये चतुर्युग बीतता है ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये जब बीत जाता है तो 4,32,00,000,000 वर्ष होते हैं, उसके बाद एक प्रलय आता है। जब एक विशेष ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं, यानी ब्रह्मा के 100 साल पूरे होते हैं, तो एक प्रलय होती है। ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष है, जिसके अंत में हमारी गणना के अनुसार 8,64,00,000
یعنی ملٹی پلائی بائی 30 ملٹی پلائی 12 ملٹی پلائی 100 یعنی 100 ورش. اتنے دفعہ 100 ورش مطلب دیوتاؤں کے اتنے ورش ہو جاتے ہیں تو سمپورن برہمانڈ کا پورن سنہار ہوتا ہے. اور دونوں ہی بار مہت تتو ارتھات بھوتک شکتی تتھا جیو تتو ارتھات تٹستھ شکتی بھگوان کے شریر میں لین ہو جاتی ہے. کیا ہوتا ہے جب پرلے ہوتا ہے, دو طرح سے پرلے ہوتا ہے, ایک جب ہے نا یہ چتریوگی سماپت ہوتا ہے اور دوسرا جب برہما کے 100 سال سماپت ہو جاتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے دونوں باری جتنا مہت تتو ہے, مہت تتو مطلب جو 24 تتو ہیں وہ, اور جو تٹستھ شکتی, مہت تتو یعنی جو بھگوان کی بہیرنگا شکتی ہے اور تٹستھ شکتی مطلب جو جیو آتما ہے, وہ سب کہاں چلی جاتی ہیں, بھگوان کے شریر میں لین ہو جاتی ہیں. سارے جیو بھگوان کے شریر میں تب تک سپت رہتے ہیں جب تک کہ جگت کی دوسری سرشٹی نہیں ہو جاتی ہے. پھر کچھ سمے تک مطلب کچھ بھی نہیں ہوتا ہے, ایک دم رات سمجھو سب کچھ بند ہو جاتا ہے. جیسے رات کے سمے کیسے ہمارا سارا کاروبار بند ہو جاتا ہے, تو وہاں پر یہ سرشٹی بھی ختم ہو جاتی ہے, لے ہو جاتی ہے بھگوان کے شریر میں. اور پھر وہ واپس سے کب کاریہ کرنے لگتی ہے, جب دوبارہ سے سرشٹی دوسری سرشٹی جب بنتی ہے تب. اور بھوتک جگت کی سرشٹی پالن تتھا سنہار کا یہی ودھان ہے. اس طرح سے بارمبار بھوتوا پرلیتے, بارمبار سرشٹی کا سرجن ہوتا ہے اور لے ہوتا ہے, سرجن ہوتا ہے اور لے ہوتا ہے. کب تک؟ جب تک کہ یہ سماپت نہیں ہوتا. جیو ایک جیو کا چکر سماپت ہو سکتا ہے, جب جیو جو ہے وہ ایسے شدھ کرم کرتا ہے جس سے کہ وہ بھگوان کو پراپت کر سکے, تب تک جو ہے نا اس کو بار بار یہاں مہتتو اور اس کو سب کو بھگوان کے شریر میں رکنا پڑتا ہے اور پھر پنہ اس کو اپنے کرموں کے انوسار دوسرا جنم پراپت ہوتا ہے. آگے شیلا پربھوپال جی کہتے ہیں کہ بھگوان دوارا گتیمان کیے جانے پر پرکرتی کے گنوں کی انتہ کریا سے بھوتک سرشٹی ہوتی ہے. اسی لیے یہاں پر کہا گیا ہے کہ تینوں گنوں کے گتیمان ہونے کے پورو بھگوان ودھیمان تھے. جب ابھی تک سنسار میں کچھ بھی نہیں تھا تب بھی بھگوان تو تھے. شروتی منتر میں کہا گیا ہے کہ سرشٹی کے پورو کیول وشنو کا استتو تھا, تب نہ تو برہما تھے نہ شیو نہ کوئی انیا دیوتا. اب شروتی کیا کہتی ہے کہ اس سمے کیول وشنو تھے, برہما اور شیو نہیں تھے. کیونکہ برہما اور شیو کیسے ہوں گے, کارن دکشا وشنو سے گربھ دکشا وشنو ہوں گے, گربھ دکشا وشنو سے برہما جی ہوں گے, برہما جی سے کون ہوں گے, شیو جی ہوں گے. ابھی تک تو سرشٹی اتپن ہی نہیں ہوئی ہے, تو سب کون تھا, صرف وشنو تھا. اب یہاں پر کرشنا کی بات نہیں بتائی جا رہی ہے کیونکہ کارن دکشا وشنو کے اندر ہی سب کچھ ہے, وہیں سے سرشٹی ہوتی ہے. بھگوان شری کرشن تو اپنے نتیہ دھام میں سدیو لیلا کرتے رہتے ہیں, لیکن یہ جو ہے بھوتک سرشٹی کی اتپتی سے پہلے کی بات کی جا رہی ہے. تو یہاں بتایا جاتا ہے وشنو کا ارتھ ہے مہا وشنو, جو کارن و سمدر میں لیٹے ہوئے ہیں, ان کی شواس سے ہی سارے برہمانڈ بیج روپ میں اتپن ہوتے ہیں اور دھیرے دھیرے پرتیک برہمانڈ کے بھیتر اسنکھیہ لوکوں کا ویراٹ سوروپ وکست ہوتا ہے. اب کارن دکشا وشنو کارن و سمدر میں شواس لیتے ہیں, اسے کیا ہوتا ہے برہمانڈ نکلتے ہیں اور پرتیک برہمانڈ کے بھیتر اسنکھیہ لوکوں کا ویراٹ سوروپ وکست ہوتا ہے. بہت سارے لوک ہوتے ہیں ایک ہی برہمانڈ میں, جیسے ہمارے برہمانڈ میں 14 لوک ہیں, تو ہر ایک برہمانڈ میں اس طرح ہوتا ہے. اور برہمانڈوں کے بیج اسی طرح وشال آکار گرہن کرتے ہیں جس پرکار ایک وٹ وکش کے بیجوں سے اسنکھیہ وٹ وکش وکست ہوتے ہیں. بس اس طرح سے برہمانڈ نکلتے رہتے ہیں, جس طرح بہت سارے وٹ ورکش نکلتے رہتے ہیں. اس طرح یہ مہا وشنو بھگوان شری کرشن کے پورن انش ہیں, جن کا الیکھ برہم سمہتا میں اس پرکار ہوا ہے. اب یہاں پر شیلا پربھوپال جی کہتے ہیں یہ جو مہا وشنو شروتی جو بتا رہی ہے کہ اس سمے خالی مہا وشنو ہوتے ہیں, وہ مہا وشنو واستو میں کون ہے وہ برہم سمہتا میں بتاتے ہیں برہما جی. برہما جی کیا کہتے ہیں, یس یئی کنیش وسیت کال متھاولمبیہ جیونتی لوم ولجا جگنندناتھ وشنو مہان سا ایہ یس کلا وشیش, یعنی کہ وہ مہان وشنو جن کی ایک ایک سانس سے انیکوں انیک برہمانڈ نکل رہے ہوتے ہیں اور واپس ان کا لئے ہو رہا ہوتا ہے, وشنو مہان سا ایہ یس کلا وشیش, وہ مہان وشنو بھی جس کی ایک ماتر کلا ہی ہے, ایک انش ہی ہے, گووند مادی پرشم تمہم بھجامی, میں ان گووند کا
भजन करता हूँ। यहाँ श्री प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं, ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा, उनके दिव्य शरीर के रोम कूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने समय में वे श्वास छोड़ते हैं। यहाँ पर ब्रह्म संहिता के विषय में बता रहे कि वो आदि पुरुष भगवान हैं, वो केवल एक कला है उनकी, ये जो विष्णु भगवान है वो उनकी कला है। और इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान श्री कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। तो स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रमाणिक स्रोत से सुन रखा होगा। श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि ये जो वैदिक सत्य है वो अवश्य किसी प्रमाणिक स्रोत से सुना होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। दिव्य विषयों से के सही सही ज्ञान का एकमात्र साधन प्रमाणिक स्रोत है, इसका कोई विकल्प नहीं है। कि वास्तविक ज्ञान यदि प्राप्त करना है तो भगवान क्या कहते हैं, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना। जो वास्तव में इन तत्वों के विषय में जानते हैं, जो वास्तविक प्रमाणिक स्रोत हैं, उनके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। आप अपने मनमाने ढंग से वास्तविकता को नहीं समझ सकते हैं। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः होने लगता है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जीव अपनी सत्ता यानी पहचान को खो देता है। यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी इसके विषय में बता रहे हैं, जो लिखा हुआ है ना, निमिलीतात, निमिलित का मतलब होता है उसके अंदर लीन हो जाना। तो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भले ही वो उस शरीर में महाविष्णु के शरीर में रहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े है कि जीव अपनी सत्ता को अपनी इंडिविजुअलिटी को खत्म कर देता है। नहीं, वो जीव जो है वो चिन्ह ही है, उसकी सत्ता उसका अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। सत्ता तो बनी रहती है और ज्यों ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। फिर जब दूसरी दफा सृष्टि होती है तो उसी के अनुसार जैसे जैसे उन्होंने कार्य किए थे उनको दूसरा जन्म मिलता है। और जन्म क्यों मिलता है, ताकि वो अपने जो भी भोग हैं उनको भोग सके, विशेषकर उनके लिए इसलिए कि जीव भोग भोगने के बाद अपने वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कर सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। तो जीव को बार बार भगवान अवसर प्रदान करते हैं, बार बार सृष्टि बनाते हैं, बार बार मनुष्य बनाते हैं, ताकि उनको वास्तविक उनके जीवन का लक्ष्य जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दासो, माया की गुलामी को छोड़कर भगवान की सेवा को स्वीकार करें, इसका बार बार उन्हें अवसर दिया जाता है। तो श्री प्रभुपाद जी आगे कहते हैं कि जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्रों के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकें, यह सुप्तोत्थित न्याय अर्थात निद्रा से जाग कर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। कि अब जिस तरह से कोई जाग के उठता है तो कैसे वापस से अपना काम शुरू कर देता है, उसी तरह से जब दोबारा जीव पैदा होता है तो उसको उसी तरह से कार्य करने का अवसर मिलता है डायरेक्ट से, ताकि वो आगे प्रगति कर सके। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तो वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है, और वह जागते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो आता है और वह फिर से अपने कार्यकलाप में लग जाता है। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु जो ही दूसरी सृष्टि होती है वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि श्रीमद् भगवद्गीता 8.18-20 में भी हुई है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि जब जीव सो रहा होता है तो उसे याद नहीं होता, उसी तरह जीव जब कारण दर्शन विष्णु में होता है उसके अंदर लीन होता है तो भी उसे याद नहीं होता। दोबारा से जब सृष्टि होती है तो भगवान क्या करते हैं, मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च, भगवान उसे मत्ति देते हैं, स्मृति देते हैं, याद कराते हैं कि तुमने पहले उसके साथ ये कर्म किया था, अब तुम्हें ये करना है। ये भगवान की कितनी अनुकंपा है, एक एक जीव का याद रखते हैं कि अब उसको ये जन्म देना है, अब उसके कर्मों के अनुसार उसको ये प्राप्त करना है, ये भोग देना है, हर एक के विषय में भगवान जो है वो स्वराट हैं, हर एक जीव की खबर रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पैदा करके छोड़ देते हैं कि जिए मरे जो करे करे, नहीं, उसके कर्मों के अनुसार वो सारे फल भगवान उनको देते हैं। और श्रीमद् भगवद गीता में 8.18 में भगवान बताते हैं, अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा प्रभवन्त्या हरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते त्रत्रैव्याव्यक्त संगके। अर्थात ब्रह्मा के दिन के शुभारंभ में सारे जीव व्यक्त अव्यक्त अवस्था से व्यक्त अवस्था में आते हैं, और फिर से जब रात्रि होती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। आगे 19 में भगवान बताते हैं, भूत ग्रामः स एवायम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवन्त्य हरागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही असहाय हालत में विलीन हो जाते हैं। भगवान कहते हैं, परस्तस् मातु भावोन्यो अव्यक्तो व्यक्त सनातन यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा यानी श्रेष्ठ है और कभी भी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। यहाँ पर ये जो भगवान श्री कृष्ण ने वेदों का गुह्य ज्ञान बताया ना, उसी ज्ञान को ये स्त्रियां बता रही हैं कि जो सामने खड़े हैं ये वही आदि पुरुष भगवान हैं। जब सब कुछ लय हो जाता है तब भी ये विद्यमान रहते हैं, ये साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं जो सामने हमारे कृष्ण खड़े हैं ना वो। और इसी बात को यशोदा प्रभुपाद जी कहते हैं, सृजनात्मक शक्ति के कार्य विमुख होने के पूर्व भी भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं है, उनका शरीर पूर्णतया आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धर्म में रहते थे जो पूर्ण और अद्वितीय है। तो यहाँ पर श्री प्रभुपाद जी ने इन स्त्रियों की बातों को बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। अभी और भी ये स्त्रियां बहुत ही सुंदर सुंदर वेदों के वाक्यों को बड़ी ही सरलता से बताएंगी। हम सबका सौभाग्य है कि हम श्री प्रभुपाद जी के द्वारा इस भागवतम के इन श्लोकों को समझने का हमें अवसर प्राप्त हुआ है। कृपया साथ रहिएगा और मेरे लिए प्रार्थना अवश्य कीजिएगा कि मैं अपनी सेवा और साधना को अच्छे से कर सकूं। हरे कृष्ण।